हाँ, सोचिए, क्या किसी वीआईपी के घर में घुसना वाकई मुश्किल है, या फिर ये कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई उसने 19 साल पुराने मर्डर केस को सुलझाने में मदद की। आज हम साइबर और वास्तविक दुनिया की सुरक्षा से जुड़े कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले पहलुओं पर बात करेंगे। ये जानकारी हमें एक विशेषज्ञ के बातचीत से मिली है जिसमें असल केस स्टडीज और अनुभव शामिल है।
हाँ बिल्कुल, आजकल अपराधी जो हैं वो तकनीक और इंसानी मनोविज्ञान दोनों का फायदा उठा के नए नए तरीके अपना रहे हैं। आज की चर्चा में हम कुछ खास खतरों और उनसे बचाव के जरूरी उपायों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे।
अच्छा, तो शुरुआत करते हैं डिजिटल अरेस्ट स्कैम से। ये आजकल काफी सुनने में आ रहा है। इसमें होता क्या है कि अपराधी खुद को पुलिस, सीबीआई या ईडी अफसर बताकर लोगों को डराते हैं। कहते हैं कि भाई आपके नाम पर कोई अवैध पार्सल मिला है या कोई गंभीर केस दर्ज हो गया है।
हाँ, और वो अक्सर तत्काल कार्यवाही या मतलब एकदम गिरफ्तारी की धमकी देते हैं। कभी कभी तो माहौल बनाने के लिए पीछे नकली सायरन या वॉकी टॉकी की आवाजें भी चला देते हैं। असल में ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का तरीका है। यहाँ सबसे जरूरी है कि आप शांत रहें। देखिए, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो डरने की कोई वजह ही नहीं है। उनसे उनकी आईडी मांगिए, नोटिस की कॉपी मांगिए, पूछिए किस थाने में केस दर्ज है, पूरी जानकारी मांगे।
लेकिन ये पेमेंट वाली बात, आजकल तो कई सरकारी सेवाओं में भी ऑनलाइन पेमेंट होती है, तो लोग शायद कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें।
नहीं, देखिए, असली पुलिस या कोई भी सरकारी एजेंसी इस तरह फोन पर या वीडियो कॉल पर पैसे नहीं मांगती। जैसे ही पैसे की बात हो या किसी अनजान अकाउंट में ट्रांसफर करने को कहा जाए, वो बिल्कुल खतरे की घंटी है। पुलिस की एक प्रक्रिया होती है, आमतौर पर पहले नोटिस भेजा जाता है।
हाँ।
अगर कोई घर आता भी है तो आप आत्मविश्वास से सवाल पूछिए, किस थाने से हैं, आईडी दिखाइए। अपराधी अक्सर इतने सवालों के लिए तैयार नहीं होते। तो यहाँ मतलब सिर्फ प्रक्रिया जानना काफी नहीं है, उस मनोवैज्ञानिक हमले को पहचानना जरूरी है जो वो डर पैदा करके करते हैं।
ये जो भरोसे और प्रक्रिया का फायदा उठाने की बात है, ये तो सिर्फ ऑनलाइन तक ही नहीं है, फिजिकल दुनिया में भी, यहाँ तक कि वीआईपी सुरक्षा में भी ऐसी कमजोरियां हैं, जैसे वो सैफ अली खान के घर वाली घटना हुई थी।
निश्चित रूप से, और इसमें साइबर तकनीक का भी हाथ हो सकता है।
अच्छा।
जैसे मान लीजिए वीआईपी या उनके सेक्रेटरी की आवाज और नंबर को स्पूफ करके, यानी उसकी नकल बनाकर सिक्योरिटी को पहले से बता दिया कि भाई कोई गेस्ट आ रहा है।
अच्छा, आवाज भी कॉपी हो जाती है।
हाँ बिल्कुल, आजकल एआई से यह संभव है। और फिर महंगी गाड़ी देखकर गार्ड्स का ज्यादा शक न करना, ये भी एक तरह की मनोवैज्ञानिक चूक है।
तो मतलब असली कमजोरी सिर्फ तकनीक नहीं है, बल्कि सिक्योरिटी के वो तयशुदा तरीके हैं जिनका अनुमान लगाना आसान है, जैसे वो गाड़ी की डिग्गी चेक करना एक रूटीन बन गया।
बिल्कुल सही कहा आपने, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस बना देना असल में अपराधियों को ये सिखाने जैसा है कि कहां जांच होगी और कहां नहीं। सुरक्षा जांच के तरीके डायनामिक होने चाहिए, बदलते रहने चाहिए, अनुमान लगाने लायक नहीं। इसीलिए वीआईपी सिक्योरिटी का नियमित रूप से साइबर एंगल से ऑडिट होना भी बहुत जरूरी है। देखना चाहिए कि कहीं कोई डिजिटल रास्ता तो खुला नहीं रह गया।
और टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये तो जैसे दोधारी तलवार है। एक तरफ तो एआई, जैसा आपने बताया 19 साल पुराने मर्डर केस के संदिग्ध की आज की उम्र के हिसाब से तस्वीर बनाकर उसे पकड़ने में मदद कर रही है, या धुंधली सीसीटीवी फुटेज साफ कर रही है,
बिल्कुल
पहचानने में मदद।
हाँ, तो दूसरी तरफ अपराधी भी इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। एआई से बने डीप फेक वीडियोस कितने चल रहे हैं, जैसे एलन मस्क या मुकेश अंबानी स्टॉक मार्केट टिप्स दे रहे हों, लोग इनमें फंसकर पैसा गंवा रहे हैं।
ओह हाँ, मैंने देखे हैं वैसे वीडियो।
और ये अयोध्या या कुंभ जैसी धार्मिक जगहों की नकली बुकिंग वेबसाइट बनाकर भी धोखाधड़ी हो रही है, बहुत आम हो गया ये। यहाँ तक कि जो मुफ्त एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो भी भरोसे लायक नहीं, वो आपका डेटा बेच सकते हैं या खतरनाक विज्ञापन दिखा सकते हैं।
ये एआई वाले नकली वीडियो क्या वाकई इतने असली लगते हैं कि मतलब समझदार लोग भी धोखा खा जाएं, उनमें कुछ गड़बड़ नहीं दिखती?
देखिए, शुरुआत में शायद होती थी, लेकिन अब तकनीक बहुत बहुत बेहतर हो गई है। आवाज, चेहरे के भाव, लिप सिंक सब काफी असली लगते हैं। इसलिए किसी भी वीडियो पर, खासकर अगर वो पैसे लगाने या निजी जानकारी देने को कह रहा हो, आंख बंद करके भरोसा करना बहुत खतरनाक है। हमेशा स्रोत की पुष्टि करनी चाहिए।
ये तो हुई तकनीक की बात, लेकिन अपराधी सिर्फ तकनीक पर ही निर्भर नहीं है, वो इंसानी भावनाओं और भरोसे का भी बड़ा शातिर इस्तेमाल करते हैं।
हाँ, ये बिल्कुल सच है। एक केस स्टडी थी, उसमें अपराधी ने सालों पहले मर चुके स्कूल के दोस्त की नकली फेसबुक प्रोफाइल बनाई, एक बिजनेसमैन से लंबे समय तक ऑनलाइन दोस्ती बनाए रखी, उसका पूरा भरोसा जीता और फिर उसकी कंपनी के गोपनीय टेंडर की जानकारी निकाल ली और वो टेंडर अपनी कंपनी को दिलवा दिया।
अरे बापरे, मतलब सालों तक नाटक किया दोस्ती का सिर्फ धोखा देने के लिए।
हाँ, और एक और मामला था जहाँ एक महिला ने अपनी सहेली को 8 साल तक एक नकली ऑनलाइन बॉयफ्रेंड के जाल में फंसाए रखा सिर्फ उसे इमोशनली कंट्रोल करने के लिए।
8 साल, ये तो अविश्वसनीय है।
जी, इसलिए किसी भी ऑनलाइन रिश्ते पर, खासकर अगर कोई सालों बाद अचानक से संपर्क करे, तुरंत भरोसा करने से बचना चाहिए। वेरिफिकेशन, जैसा मैंने कहा, यहाँ भी बहुत जरूरी है।
तो आज की इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि चाहे डिजिटल दुनिया हो या हमारी असल जिंदगी, सतर्क रहना और जांच पड़ताल करना मतलब बहुत ही जरूरी है। किसी भी लुभावने ऑफर, धमकी या अचानक बने अनजान रिश्ते पर एकदम से यकीन नहीं करना चाहिए।
निश्चित रूप से वेरिफिकेशन यानी पुष्टि करना आज के समय में सबसे बड़ा हथियार है हमारा, चाहे कोई कॉल हो, ईमेल हो, वेबसाइट हो या कोई ऐप, खासकर जहां पैसे का लेनदेन शामिल हो। दोबारा जांच जरूर करें, अगर जरा भी शक हो तो रुक जाना ही समझदारी है।
और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का ऐसा कौन सा स्टैंडर्ड प्रोसेस या नियम है जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं लेकिन शायद वो असल में एक अनदेखी सुरक्षा चूक हो सकता है। अगली बार तक सुरक्षित रहें।